बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तज़किया बिल्कुरान प्रोग्राम के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद है आप लोग रोज़े रख रहे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और रमज़ान की मुबारक सआतों को समेट रहे होंगे। आज हम जिस सिफत का मुताला करेंगे वो अल्लाह ताला ने अज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात के अल्फाज में सूरह अहज़ाब में बयान फरमाई है। ज़ाकिर से मुराद ज़िक्र करने वाला है और ज़ाकिरात ज़ाकिरा की जमा है यानी ज़िक्र करने वाली खातून। ये भी उसी सूरा में दोनों जेंडर्स के लिए अल्लाह ताला ने बयान किया है। तो ज़िक्र करना और याद करना या तस्बीह करना, ये हमारे यहाँ हम माना लफ्ज़ बोले जाते हैं। तो तस्बीह, हम्द, किसी की नात, ये सारा कुछ, या किसी को याद करना या उसका ख्याल आ जाना, या कोई बैठे बैठे कोई किस्सा याद आ जाना उसके हवाले से, ये सारा कुछ ज़िक्र के अंदर शामिल होता है। लेकिन हमारे यहाँ मजहबी तौर पर ज़िक्र सिर्फ कुछ कलिमात पढ़ लेने के नाम तक महदूद हो गया। हालांकि कुरान मजीद में, जैसे आगे चलकर हम देखेंगे, कि बहुत सारे पहलुओं से ज़िक्र का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ है। यानी अगर हम ये कह सकें कि याद रखना यानी ज़िंदगी के मामलात करते हुए, ये भी ज़िक्र है। मसलन सौदा तोलते वक्त खुदा याद आ जाए, मुआहिदा करते वक्त खुदा याद आ जाए कि मैंने बेईमानी नहीं करनी, तो ये अल्लाह को याद करना है। और इसी तरह जो कह लीजिए कि हम ऐसे बैठे बैठे ख्याल आ जाए कि खुदा को जवाब देना है, तो ये भी ज़िक्र है। और वो चीज़ भी ज़िक्र है जिसको हम बैठ कर ज़िक्र करना कहते हैं, लेकिन उसका मैं अभी नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बताता हूँ कि आपने उसमें क्या उसवा कायम किया है। वो हमारे यहाँ जो चीज़ें चल पड़ी हैं वो ज़्यादा हम कह लीजिए कि इस्लामी नहीं, बल्कि कुछ बाद में उसमें इजाफे हुए हैं। तो ज़िक्र के मानी मैं बता रहा था। एक तो ये कि इसका मतलब है याद रखना, याद करना, तज़किरा करना, यानी बातों बातों में ज़िक्र कर देना। तो याद करना, याद रखना, तज़किरा करना, यानी बातों बातों में किसी की बात कर देना, या किसी का समझ लीजिए कि ख्याल आ जाना, ख्याल में रखना, ये सारी चीज़ें ज़िक्र है। यानी आपने किसी को याद किया है या याद रखा है, ठीक हो गया जी। इसी तरह ज़िक्र के जो दूसरा पहलू है जो हमारे यहाँ फरामोश रहता है, वो नसीहत पकड़ना है। यानी जब मैंने मिसाल के तौर पर आपसे कहा कि भई ज़रा खुदा का खौफ खाएं और सौदा पूरा तोलें, तो क्या मतलब हुआ? मैंने आपको एक खुदा याद दिलाया है। जब खुदा याद दिलाया है तो फिर आपके अंदर उसका कुछ असर होना चाहिए। इस असर को लेने को भी ज़िक्र कहा गया है, यानी नसीहत पकड़ना या नसीहत इख्तियार करना। और इसी तरह ये बेदारी के मानी में भी इस्तेमाल हुआ है कि कोई बात समझने के लिए आप तैयार हो गए हैं, तो सिर्फ इस वजह से कि खुदा को जवाब देना है, तो ये भी बेदारी या ज़िक्र हो जाएगा। इसी तरह याद दहानी के लिए लफ्ज़ बोला गया है कुरान मजीद में कि आप भूल रहे थे और आपको कोई बात याद करा दी गई, तो ये याद दहानी भी इस मफहूम में, कुरान मजीद को इसी मानी में अज़-ज़िक्र कहा गया है कि हम ने ये याद दहानी तुम लोगों के लिए नाजिल की है। इसी तरह से इस मानी में भी ये ज़िक्र का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि शरीयत के अहकाम को अपना लेना। क्योंकि मसलन कुरान में भी कहता है कि तुम अल्लाह के अहकाम को याद रखो, या मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूँगा। तो इसका क्या मतलब है कि मेरे दी हुई हदायत को अपनाओ तो मैं तुम्हें नवाजता रहूँगा। तो ये सारा कुछ इसके अंदर शामिल है। लेकिन हमारे यहाँ ये ज़िक्र सिर्फ तस्बीह तक महदूद हो गया है, और जिसकी वजह से इसके मानी जो हैं वो मफकूद हो गए हैं। जो तस्बीह के लिहाज से भी है, उसमें भी यानी कुछ ज़िक्र बैठकर करना जिसको हम कहते हैं, तो ज़िक्र करना जो है ये कुछ महदूद मानी में अगर हम ले भी लें, तो उसमें भी हम नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा की बजाय कुछ दूसरी चीज़ें इख्तियार कर लेते हैं। नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा इसमें यह है कि आपने दो समझ लीजिए कि दो टाइप के काम किए हैं। एक ये कि पाँच वक्त की नमाज़ पढ़ी है, और इसके आगे पीछे कुछ जिनको हम सुनन कहते हैं وہ نفل پڑھیں. تو مثلاً دو فجر کے فرضوں سے پہلے دو رکعتیں جو آپ نے پڑھی ہیں وہ نفل عبادت ہے آپ کی, اور ہم اس کو سنت کہتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسوا کے طور پر اپنایا. اسی طرح ظہر کے پہلے اور ظہر کے بعد, اسی طرح مغرب سے مغرب کے بعد, اور اسی طرح عشاء کے بعد جو رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں اس کو ہم اسوا کے, یہ ذکر کیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر میں ایک کام یہ کیا ہے کہ نمازوں کا ایک اسوا قائم کیا ہے. دوسری طرف یعنی نمازوں کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک دوسرا اسوا قائم کیا ہے جس کو ہم صحیح معنی میں اگر ہمارے اردو میں جو مفہوم ہے ذکر کرنے کا اس پہلو سے اس کو اگر سمجھیں تو وہ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی کام کیا ہے تو اس سے پہلے کچھ کلمات پڑھے ہیں, خاص صرف بسم اللہ پڑھی ہو یا کچھ اور کلمات بھی ادا کیے ہوں, مثلاً واش روم میں جانے کے کیا پڑھا ہے, صبح اٹھتے ہوئے کیا پڑھا ہے, سوتے ہوئے کیا پڑھا ہے, بازار میں داخل ہوتے ہوئے کیا پڑھا ہے, نئے کپڑے پہنتے وقت کیا کیا ہے, اور آئینہ دیکھتے وقت کیا کیا ہے. یہ سارا کچھ ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اسی طرح اگر کوئی شیطانی خیال آئے گا تو اس وقت بھی اعوذ باللہ وغیرہ پڑھ لینا, لاحول پڑھ لینا. اسی طرح اذان ہو رہی ہے تو اس کا کیسے جواب دینا ہے, یہ سارا کچھ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوا کے طور پر قائم کیا ہے. لیکن ہم نے اس اسوا کو چھوڑ کر کچھ دوسری چیزیں اختیار کر لیں اور تعداد اور مقدار میں پڑ گئے کہ اتنی تسبیح کرنی ہے, وہ قرآن و سنت میں اس کا اتنا واضح ثبوت نہیں ہے. تو اب یہ بات کہ ذکر کرنا اس کے کیا کیا معنی ہے وہ میں نے واضح کر دیے ہیں کہ خدا کو یاد رکھنا یہ بھی ذکر ہے, خدا کو یاد کرنا بیٹھ کر یہ بھی ذکر ہے, اللہ تعالیٰ کا کوئی واقعہ سنانا کوئی نصیحت کرنا یہ بھی ذکر ہے تذکرہ کرتے ہوئے, دل میں خدا کا خیال رکھنا یہ بھی ذکر ہے, اور یہ بھی ذکر ہے کہ ہم کوئی ہمیں خدا کی طرف سے نصیحت کرے تو ہم اس نصیحت کو مان جائیں خدا کے ڈر کی وجہ سے, خدا کے جواب دہی کے لحاظ کی وجہ سے. اور اسی طرح جب کوئی ہمیں یاد دہانی کرے تو ہم اس کو ماننے کو تیار ہوں, صرف اس وجہ سے کہ وہ آدمی اللہ کا نام لے کر کہہ رہا ہے تو ہم بیدار ہو جائیں اس کو ماننے کے لیے, تو یہ بھی ذکر ہوگا. اسی طرح احکام الہی کو اپنا لینا تو وہ بھی ذکر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھے یاد رکھو, یعنی میرے قوانین کو میرے احکام کو اپناؤ تو میں تمہیں اپنی طرف سے نوازتا رہوں گا. ان ساری چیزوں میں جو یاد کرنا یا یاد رکھنا ہے اس میں ایک اور چیز پہلو بڑی نمایاں رہنی چاہیے, وہ یہ کہ کسی کے احسانات اور نعمتوں کو یاد رکھنا. تو خدا کے ساتھ ہمارا یہ تعلق بھی ہے کہ جب ہم خدا کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ بھی یاد رکھنا ہو جائے گا. یہ جو صفت ہے الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, یہ دراصل اسی سورہ احزاب کی 35 آیت میں سے ہے, اور یہ دونوں جینڈرز کے لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. تو مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنے والے بہت زیادہ اور اللہ کو یاد کرنے والیاں بہت زیادہ, یہ مومنین کی صفت بیان کی گئی ہے. یاد کرنے والی, یاد رکھنے والی, یاد خیال پرواہ کرنے والی, خدا کے حوالے سے معاملات کو انجام دینے والے, یہ سارے اس کے مفاہیم ہو جائیں گے. یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ مطالبہ کیا ہے, جس کی وجہ سے وہ صفت بن جاتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اللہ کو بہت یاد رکھا کرو, بہت یاد کیا کرو. یاد رکھا کرو یعنی خدا کی طرف سے خدا کو زندگی میں دھیان رکھنا کہ میں نے خدا کو جواب دینا ہے. مختلف مواقع پر اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مختلف موقعوں پر, مختلف نعمتوں پر, مختلف اوقات میں خدا سے طالب مدد ہونا, خدا سے ذکر اذکار کر کے خدا کو یاد کرنا, بسم اللہ پڑھنا, یہ چیز اس میں شامل ہو جائے گی. تو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے خدا کو یاد رکھنا, یہ یاد رکھنا صرف زبان سے ادا کرنا ذکر نہیں ہے, کیونکہ زبان سے ادا کرنے والے کتنے ہی ہیں جو اپنا غرور نہیں چھوڑ پاتے. تو خدا کو یاد رکھنا بمانا اگر آپ یاد کر رہے ہیں زبان سے بھی تو پھر ہر موقع پر اس کے لحاظ سے زندگی میں اثر نظر آنا چاہیے. ذکرن کثیرہ, بہت یاد رکھا کرو اللہ تعالیٰ کو. وسبحوا بکرتم و اصیلہ, اور اس کے لیے صبح و شام خدا کی نماز پڑھا کرو. تو سبحوا بکرتم و اصیلہ, بکرا صبح اور شام, یہ اسلوب ہماری اردو میں بھی ہوتا ہے کہ صبح سے شام تک کام کر رہا ہوں یعنی سارا دن. تو तो बुकरतम व असीला का मतलब है कि पांच टाइम की जो नमाज मुकर्रर की गई है वो तुम पढ़ते रहो। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु, तो अल्लाह की ज़ात कौन सी ज़ात है कि वो खुद तुम्हारे ऊपर अपनी तरफ से रहमतें और फजल नाजिल करते रहते हैं और उसके फरिश्ते भी। ये बिल्कुल वही असलूब है जो कुरान मजीद में नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इख्तियार किया गया है कि इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लून अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो यहाँ फरमाया गया है कि अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर युसल्ली यानी अपना फजल नाजिल करता है और उसके फरिश्ते भी अपना फजल नाजिल करते हैं। किन के ऊपर? जो अल्लाह को बहुत याद रखने वाले हैं, यानी 24 घंटे में जब वो काम कर रहे हैं, लोगों के साथ लेन देन कर रहे हैं, मामलात कर रहे हैं, तो उस सारे अमल में वो चूँकि खुदा को याद रखे हुए हैं तो इस वजह से अल्लाह के फरिश्ते भी रहमत की दुआएँ करते रहते हैं और अल्लाह ताला अपना रहम अपना फजल हमारे ऊपर नाजिल करते रहते हैं। और ये काम इसलिए होता है कि लियुखरिजकुम मिनज़ ज़ुलमाति इलन नूर, गुमराही से निकाल कर, खराबियों से निकाल कर हदायत की रोशनी की तरफ। वकाना बिल मोमिनीना रहीमा, और अल्लाह ताला जो है वो तमाम मोमिनीन के साथ बहुत शफीक हैं, रहम दिल हैं। तो इसमें खुदा की तरफ से जो मुतालबा सामने आ रहा है वो ये कि खुदा को बहुत याद रखना है 24 घंटे। अगर ज़ुबान से भी अदा करना है तो अदा करना है, अमल में भी खुदा को याद रखना है, ख्यालात में भी याद रखना है, और जहाँ कहीं मौका आए एक दूसरे को नसीहत करते हुए तो वहाँ खुदा के हवाले से लोगों को नसीहत भी करना है। ये सारा कुछ इसके अंदर शामिल है। अब ये सूरह नूर में बहुत ही खूबसूरत ये मकाम है, ये वो आयात हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने इस सूरह का नाम अन्नूर पढ़ा है। तो जब अन्नूर वाली आयत, अल्लाह नूर समावाति व लर्ज वाली आयत के बाद ये अगली आयत है, फरमाया रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। ये कुछ लोग हैं मोमिनीन, आला दर्जे के लोग, कि इनको तजारत और ख़रीदो फरोख्त यानी दुनियादारी के काम अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल नहीं करते, व इकाम सलात और नमाज पढ़ने से गाफिल नहीं करते, व इताए ज़कात और अल्लाह की राह में खर्च करने से गाफिल नहीं करते। यखाफून यौमन ततकल्लबु फ़ीहिल क़ुलूबु वल अबसार, क्यों? क्योंकि ये उस दिन से डरते हैं कि जिसमें आँखें और दिल पलट जाएंगे। ले यज़ज़ियहुमुल्लाहु अहसना मा अमिलू, अल्लाह ताला इनको बहुत जजा देगा उनके अमलों की, व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही और मज़ीद अपनी फजल से देगा। अब ये दो चीज़ें हैं कि ये लोग जो हैं ये खुदा के साथ इनका ताल्लुक खुदा के ज़िक्र के साथ, खुदा के खौफ और खुदा का, यानी खुदा हर वक्त याद है। तो सौदा तोलते हुए ध्यान मस्जिद में होता है कि अभी अजान होनी है मैंने जाना है, सौदा तोलते वक्त खुदा के हजूर पेश होने का डर होता है इसलिए दयानतदारी हो रही होती है। तो ये जो अज़्ज़ाकिरीन अल्लाह व अज़्ज़ाकिरात है, ये इंसान की गुट्टी में जब पड़ जाती है ये आदत कि वो खुदा को याद रखे हुए है, तो वो हमेशा के लिए उन चीज़ों से दूर हो जाता है जो उसे गुमराही की तरफ ले जाने वाली, खराबी की तरफ ले जाने वाली हैं। तो ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मेरे ये बंदे, इनको कोई चीज़ गाफिल नहीं करती। तो ये ज़ाकिरीन है, ये अल्लाह के याद रखने वाले हैं कि जो बिल्कुल गाफिल नहीं होते। हो सकता है कि उनकी ज़ुबान खामोश, वो बातें कर रहे हों लेकिन बातें करते हुए वो अपने आप को जवाबदेह महसूस कर रहे होते हैं, तो वो झूठ नहीं बोल रहे होते, चुगली नहीं कर रहे होते, गीबत नहीं कर रहे होते, वो धोखा नहीं दे रहे होते लोगों को, वो माँ बाप का गलतियाँ देख कर भी खुदा की खातर एहतराम कर रहे होते हैं, उफ तक नहीं कहते, वो अपने अंदर की जज्बात को कंट्रोल करके अदब आदाब का लिहाज करते हुए ख्वातीन की मजलिस में बैठते हैं और मर्दों की मजलिस में ख्वातीन बैठती हैं, वो सारी चीज़ों का लिहाज करते हुए ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। अब ये जैसा मैंने बताया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे से मालूम होता है कि आपने ज़िक्र के लिए 5 वक्त नमाज पढ़ी और घर आकर कुछ नवाफिल भी अदा किए। तो यहाँ इन आयतों से मालूम होता है कि नमाज खुद ज़िक्र का हिस्सा है। व अकिम सलात तरफ़ नहर व ज़ुल्फ़न मिन अल्लैल इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन। जिन ज़ाकिरीन, ज़िक्र करने वालों का यहाँ तस्करा हो रहा है, उनके बारे में फरमाया कि नमाज कायम करो दिन के दोनों किनारों पर यानी सुबह शाम और रात के वक्त भी। क्यों? क्योंकि ये जो नेकियां होती हैं ये बुराइयों को धो देती हैं। ये बहुत बड़ी बशारत है कि जो नमाज की नौइयत का जिक्र करने वाले लोग हैं उनके लिए जो नमाज है वो उनके दिन भर के कोताहियों को गुनाहों को धो देती है, कफारा बन जाती है। कफारे का लफ्ज़ ज़रा इतना अच्छा नहीं है, यानी वो समझ लीजिए कि साफ़ कर देती है। यानी ऐसा ही जैसे कि पेंसिल से आपने लिखा और इरेजर से रबर से आपने मिटा दिया, तो नमाज आपने कोई गलती की छोटी मोटी उसके बाद आपने नमाज पढ़ी तो वो उसको धो देगी। क्यों? कि ये दरअसल इसको समझ लीजिए कि जैसे हमारी अकाउंट्स की किताब चलती है बिल्कुल उसी तरह नेकी और बदियों की अकाउंट्स की किताब चलती है। यानी आपने 10 रुपये का खर्चा किया तो आपकी जो इनकम है उसमें से कम हो जाएगा। तो क्या हुआ कि आपके पास जो लिखा हुआ था 100 रुपये लिखा हुआ था, 10 रुपये गए तो बाकी 90 रह गए। ऐसा ही नेकियों और बदियों में होता है कि यूँ समझ लीजिए कि बदियाँ खर्च है और नेकियाँ आपकी इनकम है। तो जैसे ही आप नेकी करते हैं तो आपके अकाउंट में पैसे जमा हो जाते हैं। तो आपने मसलन 5 नमाज़ें पढ़ी सारा दिन, तो फ़र्ज़ कर लीजिए कि हम हर नमाज का एक ही नेकी लिख लेते हैं तो 5 नेकियाँ आपको मिल गई। आपने झूठ बोला तो मसलन 0.5 गुना लिखा गया तो कितना रह गया, 4.5 नेकियाँ रह गई। तो सारा दिन इस तरह से होता रहता है। तो अब ऐसा ही नमाज करती है कि आपने कोई गुनाह किया था, 0.5 आपने नेगेटिव काम किया था, नमाज पढ़ी तो वो उसको खा जाएगी और खुद 4.5 रह जाएगी। तो इस तरह से नेकियां बदियों को खाती रहती हैं। तो फरमाया कि ये बात कि नेकियां बदियों को खाती रहती हैं, ये नसीहत सिर्फ उनको लिए काम आ सकती है जो खुदा को याद रखने वाले हैं। जो खुदा को याद रखने वाले नहीं हैं उनके लिए ये नसीहत काम आने वाली नहीं है कि नेकियां बदियों को खा जाती हैं, तो इसलिए नमाज पढ़ा करो सुबह शाम। वो नमाज नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो खुदा को याद रखने वाले नहीं, उनको खुदा फरामोश हो चुका है। तो खुदा फरामोशी जाकिर नहीं रहने देती, जिक्र करने वाला नहीं रहने देती। ये सूरह ताहा की जो अगली आयत है, ये नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जुमला बोला है जब वो तूर पर थे कि इन्नी अनल्लाह, मैं अल्लाह हूँ, ला इलाह इल्ला अना, मेरे अलावा कोई खुदा नहीं है दुनिया में, कायनात में, पूरी में, फाबुदनी, तो मेरी ही इबादत करो, वह अकीम सलात, और नमाज पढ़ना, ले जिक्री, मेरी याद को कायम रखने के लिए। तो गोया नमाज जिक्र का जरिया है। तो मैंने जैसा पहले बताया था शुरू में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी है मुसलसल इस बात के लिए, ले जिक्री, खुदा की याद को कायम रखने के लिए। खुदा की याद से जो गफलत है उसका नुकसान भी कुरान मजीद ने बताया है, क्योंकि अगर ये नुकसान हमारे सामने ना रहे तो हम खुदा की याद को फरामोश कर देने वाले हैं। बमय याशुअन जिक्र रहमान नुकैज लहू शैतानन फहुआ लहू करीन, जो खुदा जिक्र रहमान से गुरेज करता है तो उसके लिए हम एक शैतान मुकरर कर देते हैं जो उसका दोस्त बन जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो दिल जिक्र से खाली है खुदा उसमें मौजूद नहीं होता, खुदा की याद उसमें आकर बुराइयों से नहीं रोकती, खुदा का खौफ उसमें बैठकर बंदे को मोमिन नहीं बनाता, बंदे को दयानदार नहीं बनाता, बंदे को इल्ज़ाम लगाने से रोकने वाला नहीं बनाता, तो फिर शैतान उसकी कमान संभाल लेता है, फिर शैतान के हत्थे में होता है वो, जो शैतान कह रहा होता है वो करता चला जाता है। और ये शैतान सिर्फ इबलीस नहीं है या उसके चेले चांटे नहीं है, बल्कि हमारा नफ्स भी यही काम करना शुरू कर देता है। तो ये लाजमी नतीजा है इस बात का कि हम खुदा की याद से गाफिल हो जाएं। तो खुदा की याद से गाफिल होना ये नहायत संगीन जुर्म है, जिसकी वजह से फिर शैतान के काबू में हम चले जाते हैं और वो कोई लम्हा नहीं छोड़ता फिर कि जिसमें हमें गुमराह ना करे। जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि खुदा की शरीयत को अपना लेना भी जिक्र है। तो फरमाया वाइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौकक़ुम अत्तूर, ये यहूद से अल्लाह ताला मुखातिब हैं, खुजू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन वस्कुरु मा फीहि लअल्लकुम तत्तकून, के याद करो जब हमने तुमसे मीसाक लिया था और तूर को तुम्हारे ऊपर हमने ऐसे उठा दिया था और कहा था कि ये जो शरीयत मैं तुम्हें दे रहा हूँ इसको मजबूती से थाम लो, वस्कुरु मा फीहि लअल्लकुम तत्तकून, और जो कुछ इसमें है उसको याद रखना। ये नहीं कि बैठ के ज़ुबानी याद कर लेना या उसकी तस्बीह करना या उसको सुबह शाम हिफ्ज़ करके उसका तस्करा करते रहना, नहीं, बस गुरु माफ़ी ही, जो उसमें अहकाम हैं उनको याद रखना, यानी उनको अपना लेना, उनके मुताबिक ज़िंदगी बसर करना। उनको याद रखोगे लालनकुम तत्तकुन, तो तुम मेरी पकड़ से बच जाओगे। बसकुरुफी ही जो इस तरह के असालीब होते हैं, कोई यह कह सकता है कि भाई यहाँ सीधा अल्लाह ताला ने अमल करने का क्यों नहीं कहा, ये ज़्यादा मौसर होते हैं बाज मुहावरे बाज जुमले। मसलन हम बजाय इसके कि ये कहें कि गौर करो क्या गलती कर रहे हो, देखो देखते नहीं हो क्या गलती कर रहे हो, तो देखते नहीं का मतलब कि सादा सी चीज़ भी तुम्हें नज़र नहीं आ रही, और गौर करने का मतलब ये होगा कि हम कह रहे हैं कि ज़रा गौर करके देखो गलती कर रहे हो, लेकिन हम जब ये कहना चाह रहे हों कि नहीं गौर के बगैर ही तुम्हें पता चलना चाहिए कहीं, तो हम कहें देखो क्या कर रहे हो। तो इसलिए ये असालीब ज़्यादा मौसर होते हैं। तो वस्करु माफ़ी ही का मतलब ये है कि तुम इनका ख्याल रखना, इनको याद रखना, इनको छोड़ना देना जो अहकाम इस तौरात और इंजील में लिखे हुए हैं। तो ज़िक्र का मतलब ये भी है कुरान मजीद की रोशनी में कि अल्लाह ने मुझे कहा है नमाज़ पढ़नी है तो मैं नमाज का ध्यान रखूँ, नमाज़ पढ़ूँ, उसको ज़ाया ना करूँ। अल्लाह ने मुझे कहा है कि दयानतदारी करनी है तो दयानतदारी करूँ। अल्लाह ताला ने मुझे कहा है ज़कात देनी है तो ज़कात दूँ। ये करते रहना भी ज़िक्र है। तो ज़िक्र सिर्फ मुँह से कुछ कलमात अदा करना नहीं है, बल्कि अगर हकीकत में देखा जाए तो वो ज़रा कमज़ोर दर्जे का ज़िक्र है। नमाज़ में खड़े हो जाना, वज़ू करना, वज़ू करके उसको याद रखना कि मैंने नमाज़ पढ़ने जाना है और नमाज़ पढ़ने चले जाना, ये बड़ा ज़िक्र है बमुकाबला घर बैठ के तस्बीह में के दानों पर गिन लेना। इसी तरह बाज़ार में बैठ कर सौदा तोलना और खुदा खौफी की वजह से पूरा पूरा सौदा तोलना, ये बड़ा ज़िक्र है। इसी तरह शरीयत पे अमल करना इस वजह से कि मैंने खुदा को जवाब देना है, ये बहुत बड़ा ज़िक्र है। इस ज़िक्र को ध्यान में रखना चाहिए। फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। तो ये मुसलमानों से, वो पिछली आयत जो थी वज़कुरू माफ़ी लअल्लकुम तत्तकून, वो यहूद से बात थी। अब ये मुसलमानों से है कि फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद रखोगे मैं तुम्हें याद रखूँगा। मतलब क्या कि तुम मेरे अहकाम पे अमल करोगे, मेरी खुदा खौफी के साथ ज़िंदगी बसर करोगे तो मैं तुम्हें याद रखूँगा, अपना इनाम से नवाजता रहूँगा, मेरी तायद तुम्हें हासिल होगी, तुम्हारी तोपें नहीं भी चलेंगी तब भी तुम दुश्मनों पे गालिब आ जाओगे, लेकिन मुझे याद नहीं रखोगे तो मैं भी तुम्हें फरामोश कर दूंगा। तो खुदा फरामोशी का नतीजा क्या है कि खुदा हमें फरामोश कर दे, और इस वक्त उम्मत इसी तरह के जवाल का शिकार है। वश्कुरूली, और मेरा शुक्र अदा करते रहना, वला तकफुरूनी, और मेरी नाशुक्री ना करना। अब जिक्र और शुक्र का एक ताल्लुक है, लेकिन एक बात मैं ये पहले वाजे कर दूँ कि ये आयत दरअसल सहाबा को कही गई और बनी इस्माइल के साथ अल्लाह का वादा है कि बनी इस्माइल अगर अल्लाह ताला को पूरी दयानतदारी से याद रखेंगे, उसकी शरीयत पर अमल करते रहेंगे तो उनको दुनिया में गलबा मिलता रहेगा, ये उनके साथ वादा है। तो लेकिन हमारे लिए जो नसीहत निकल रही है वो ये कि जिक्र दरअसल खुदा का शुक्र है। ये जिक्र, ये खुदा की शरीयत को अपनाए रखना, खुदा की हदायत को अपनाए रखना, ये दरअसल शुक्र है, और इसको छोड़ देना ये नाशुक्री है। तो गोया शरीयत के ऊपर अमल करना जो जिक्र करने वाले लोग हैं, जिक्र करने अपने जामे मानी में, सिर्फ बैठ कर तस्बीह करने वाले नहीं, अपने जामे मानी में कि जो टाइम होता है तो नमाज़ के लिए उठ जाते हैं, सौदा तोलने का टाइम होता है तो उसमें दयानतदारी बरत रहे होते हैं, किसी मौके पर गवाही देनी मकसूद होती है तो सच्ची गवाही देते हैं, ये जो लोग खुदा को याद रखे हुए हैं ये दरअसल खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं। और ज़ाहिर है कि ऐसे लोगों को खुदा की नज़र में एक इज़्ज़त वाला मकाम है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़्कुर नेमतल्लाहि अलैकुम। खुदा की नेमत को याद रखना ये भी बहुत ज़रूरी होता है, और ख़ास तौर से यहाँ जो बात कही गई है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर ये एहसान किया था कि तुम दुश्मन थे और तुम्हें तुम्हारे अंदर दोस्ती पैदा कर दी, तो अल्लाह की ये नेमत याद करना कि उसने हमारे ऊपर ये फजल किया है तो मजीद नेकियों का जरिया बनता है। तो खुदा की नेमतों का, खुदा के दिए हुए, मसलन मैं बीमार हूँ तो मुझे बाकी चीज़ें अल्लाह ने दे रखी हैं, मेरे पास खाना पीना है, मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरे घर बार है, और इस वक्त मैं बीमार हूँ, तो अगर मैं बाकी नेमतों को भूल जाऊँ और सिर्फ बीमारी के पीछे पड़ जाऊँ तो खुदा का नाशुक्रा हो जाऊँगा। तो खुदा की नेमतों को याद रखना, माजी में जो उसने कर रखी हैं, इस वक्त जो हमारे साथ हैं, ये सारी की सारी नेमतें खुदा के तरफ हमारे रुझान को कम नहीं करती। हमारे यानी अगर कोई बीमारी आ जाए तो खुदा से आदमी नाराज़ हो जाए کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی بیمار کرنا تھا, میرا ہی گھر دیکھ لیا, اس نے یہ کر دیا. تو یہ چیزیں اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی اگر وہ خدا کی باقی نعمتوں کو یاد رکھنے والا ہے. تو اس لیے خدا کے ساتھ جو یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے اس کا موضوع دوسرا ہے, وہ یہ کہ اللہ کی ہدایت کو مضبوطی سے تھام لیا جائے جو قرآن کی شکل میں ہے, اور تفرقے میں نہ پڑا جائے. لیکن اس کے لیے جو چیز کام آنے والی ہے اس عمل کے لیے, وہ آج کا موضوع ہے, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھنا, اس کے احسانات کو یاد رکھنا, اس کے دیے ہوئے چیزوں کو یاد رکھنا جو اس نے ہمارے ساتھ اچھائیاں کر رکھی ہیں. خدا کی جو یاد ہے یہ جب صحیح معنی میں آتی ہے تو ہمیں توبہ پہ ابھارتی ہے. اس کو یہاں بیان کیا ہے خوبصورت انداز میں, وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشًا, یہ لوگ کہ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے, اَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, یا اپنے اوپر کوئی اور گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم ڈھا لیتے ہیں, ذکر اللہ, اور پھر اللہ یاد آ جاتا ہے, فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ, تو فوراً اپنے گناہوں کی کے لیے استغفار کرتے ہیں. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اور اللہ کے سوا تو کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے, لہٰذا وہ خدا سے جو استغفار کرتے ہیں تو بالکل درست کرتے ہیں. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا, اور اپنے خدا کے یاد آ جانے کی وجہ سے پھر وہ اپنے گناہ پر قائم بھی نہیں رہتے, اس پر اصرار بھی نہیں کرتے کہ مسلسل اس گناہ میں پڑے رہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور وہ جانتے ہوتے ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں یہ دراصل ذکر والے ہیں, یعنی خالی یہ بیٹھ کے تسبیح کر لینا اور تسبیح کرنے کے بعد جا کر سودا پورا نہیں تولنا اور اپنے ہمسایوں کی چگلیاں کرتے رہنا اور لوگوں کو دھوکہ دیتے رہنا اور لوگوں سے پیسے بٹورنے کے پلاننگ کرتے رہنا, یہ ذکر نہیں ہے. ذکر یہ ہے کہ آدمی جیسے ہی کوئی گناہ کر بیٹھے اور فوراً خدا یاد آ جائے تو استغفار کرے اور پھر اپنی برائی کو چھوڑ دے جس پر وہ جس میں پڑا ہوا تھا وہ, کیونکہ اگر اس نے وہ برائی قائم رکھی ہے تو اس کا ذکر کوئی فائدہ نہیں دیا, اس کی واپسی نہیں ہوئی. تو فرمایا اولائک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم, ان لوگوں کو مغفرت ملے گی, یعنی گناہ ہوا ہے اس لیے مغفرت ہونی ہے. لیکن کیوں ہو رہی ہے؟ دو وجہ سے, کیونکہ جیسے ہی خدا یاد آیا تو استغفار کیا, اور دوسرے یہ کہ اپنے گناہ پر باقی نہیں رہے, چھوڑ دیا اس کو. تو یہ دو کام ہونے چاہیے, اگر نہ یہ نہیں ہوئے ہیں تو آپ کے ذکر نے آپ کو فائدہ نہیں دیا ہے. ان لوگوں کو مغفرت ہوگی, وہ جنات ان تجری من تحت الانہار, اور انہی کے لیے وہ باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, یعنی کبھی ان کے اوپر زوال نہیں آئے گا, کبھی خزاں نہیں آئے گی. خالدین فیہا, اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ونعم اجر العاملین, اچھے عمل کرنے والوں کا کتنا ہی اچھا انعام ہے جو یہ ان کو دیا جائے گا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. جو ذکر کرنے والے ہیں, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا, جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے خدا کو یاد رکھتے ہیں اور اللہ کی کائنات میں غور کرتے رہتے ہیں. کیوں کہ جو اللہ کو یاد نہیں کر رہا ہو وہ اللہ کی کائنات میں غور بھی غلط طریقے سے کرے گا, جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے وہ بھی اس کائنات پر کسی اور طریقے سے غور کرے گا. جو اللہ کو مانتا ہے تو یہاں کی چھوٹی بڑی چیزیں اس کو سوچ میں حکمتیں بتاتی رہتی ہیں. تو خدا کو یاد کرنے والے اس کائنات کو ایک اور زاویے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ نتیجہ کیا نکالتے ہیں کہ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے, وہ یہ تفکرون فی الخلق السماوات, اور کائنات کی حقیقت پہ غور کرتے رہتے ہیں, تو نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے اللہ تعالیٰ یہ تم نے بے مقصد نہیں بنایا ہوگا. تو اب دیکھیے کہ ذکر کہاں لے گیا ہے, یعنی خدا کا خیال, خدا کی یاد جب چیزوں میں ڈھلتی ہے تو آدمی کو دیانتدار بناتی ہے, جب رویوں میں ڈھلتی ہے تو آدمی کو ملنسار اور خدا خوفی کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بناتی ہے, اور جب یہ یاد کائنات پہ غور کرنے اٹھتی ہے تو آدمی کو اس حقیقت کا ادراک کراتی ہے کہ یہ کائنات بلا وجہ نہیں بنی, اس کا کوئی مقصد ہے. تو فرمایا سبحانک, تو بلا وجہ تو کام نہیں کرنے والا ہے, تو ایسی خطاؤں سے پاک ہے کہ ایسے ہی کائنات بنا دے, نہیں, تو نے ضرور کسی مقصد سے بنائی ہے. تو مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ یہی کہ میرا جو خیر و شر کا شعور میرے اندر رکھا ہے اس کے اوپر میری جواب دہی ہونی ہے. فاکین عذاب النار, تو اے اللہ مجھے عذاب سے بچا جو تمہیں آگ کا دہکانا ہے قیامت والے دن. یہاں اب ایک اور پہلو سے ذکر کا خدا نے تذکرہ کیا ہے, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ قوم عاد اور قوم سمود وغیرہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ ہم نے تمہیں نوح کے بعد اس علاقے کا خلیفہ بنایا, یعنی جانشین بنایا ان کو قوم نوح کا, تو تمہیں ہم نے اپنی خلقت میں یعنی قد کاٹ میں بہت کشادگی دی, تو تم اللہ کے ان احسانات کو ان شانوں کو یاد کرو. قوم عاد کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ لمبے چوڑے قد کے تھے اور بہت باصلاحیت طاقتور قوم تھی, تو اس لیے فرمایا کہ وزادکم فی الخلق بسطہ, کہ تمہاری کشادگی رکھی تھی قد کاٹ میں اور جسامت میں اور قوت جو طاقت ہوتی ہے انسان کے جسم, ان سب کو یہاں بیان کیا ہے. تو فرمایا فذکروا اعلی اللہ, اللہ کی شانوں کو یاد رکھو. تو خدا کی جو شانیں ہیں یہ پوری کائنات میں بکھری ہوئی ہیں. یہاں تو ایک پہلو سے زیر بحث آیا ہے کہ حضرت نوح کی قوم کا جب زوال آیا طوفان کی وجہ سے, ان کو غرق کر دیا گیا, تو ان کے بعد ان قوموں کو جانشین بنایا گیا ہے. تو فرمایا کہ میری شانوں کو یاد رکھو. یہ پوری کائنات جس شان کے ساتھ تخلیق ہوئی ہے یہ خدا کی آلہ میں سے ہے, خدا کی شانوں میں سے ہے. اس نے جو جہاں دنیا میں امتحان کا نظام بنایا ہے اتنا شاندار. اگر میں کسی نے مجھ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں کائنات کیوں بنائی ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ سوال کبھی سامنا نہیں ہوا, تو پھر خدا کی طرف سے میرے ذہن میں یہ جواب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات اس طرح سے ڈیزائن کی ہے کہ لگے کہ یہ خود ہی پیدا ہوئی ہے, لگے کہ یہ خود ہی بنی ہے. یہ اس پروسیس کو مکمل ہونے کے لیے ضروری تھا کہ ہر چیز کا ایک سبب ہو, ہر چیز کا ایک سبب ہو. تو جب ہر چیز کا سبب چلتے چلے جائیں اور مثلا بگ بینگ تک پہنچ جائیں, تو یہ سارا ڈیزائن اس طرح سے کیا گیا کہ بگ بینگ ہو, اس کے بعد وہ پورا پروسیس گزرے. اس کو اپنی پیدائش کے حوالے سے دیکھ لیں کہ پورے ایک لمبا عرصہ لگتا ہے ہمارا بچہ بننے میں اور پھر بالغ ہونے تک. تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ہمیں بالغ ہونے میں, اگر 16 سال کی عمر میں بالغ ہوتے ہیں تو 1 سال ماں کے پیٹ میں لگا لیجئے, تو 17 سال ہمیں مکمل انسان بننے میں لگتے ہیں, 17 سال. تو کائنات بھی ایسے ہی اللہ نے بنائی ہے. اگر ادھر ہم دعا کرتے ادھر ٹھک سے ایک بچہ دنیا میں آ جاتا تو خدا کی مداخلت نظر آ جاتی. تو خدا نے کائنات اس شان سے بنائی ہے کہ کہیں پر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا اس کا سبب کوئی نہیں ہے. نہیں, بالکل ہر چیز کا ایک سبب ہے, اور یہ بگ بینگ تک چلا جاتا ہے. بگ بینگ سے پہلے کیا ہے وہ جب سائنس بات کرے گی تو پھر دیکھیں گے, یا قیامت والے دن اللہ سے پوچھیں گے کہ اس سے پہلے کیا تھا. لیکن بہرحال میں جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ خدا کی جو شانیں اس کائنات میں بکھری ہوئی ہیں وہ شانیں خود ہمیں آگاہ کرنے کے لیے کافی ہیں, وہ ہمیں یاد دلا دیتی ہیں کہ کیا صورتحال ہے, ہمارا کس خدا کے ساتھ واسطہ ہے. تو اس لیے فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک ذکر آیا ہے, یاد دہانی آئی ہے, تو تم اس کو مانو اور غور کرو, کیونکہ یہ صرف وہی مان سکتے ہیں جو اس کائنات میں خدا کی شانوں کے اوپر غور کرتے ہیں. تو شانوں کو یاد رکھنا, خدا کی شان کو سمجھنا, اس سے نصیحت پکڑنا, یہ بھی ذکر کا ایک حصہ ہوا. واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول. ہمارے ہاں ذکر کرنے والوں نے بہت عالی شان طریقے نکال لیے ہوئے ہیں, مسجدوں کے سپیکر آن کر کے اس کے اوپر ہم ذکر کرتے ہیں اور نہ سمجھ میں آنے والی آوازیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کے آداب بتائے ہیں ان کو ذرا دیکھ لیجیے. اپنے رب کو یاد کرو, فی نفسک, اپنے دل میں یاد کرو یعنی یاد رکھو, تضرع کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, وخیفتن اور خوف کے ساتھ, ودون الجہر خاموشی کے ساتھ, من القول دل میں, بالغدو بھی ولا سال صبح بھی اور شام بھی, ولا تکن من الغافلین اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤں. تو یہ جو صبح و شام خدا کو دل میں یاد رکھنا ہے, आजजी के साथ डरते हुए, ये क्या चीज है? ये जाहिर है कि हर वक्त खुदा का मुस्तहजर रहना है, हर वक्त खुदा की याद का दिल में मौजूद रहना है, यही चीज मुतालबा है और कुछ भी नहीं है। अगर किसी ने तस्बीहात नहीं पढ़ी हैं लेकिन खुदा खौफी की वजह से एक एक दिन का काम उसने सही किया है खुदा की याद की वजह से कि खुदा को जवाब देना है, वो जिक्र इलाही में है। और सही मानी में जाकिर यही है, सही मानी में जिक्र करने वाला खुदा का बंदा यही है। या अय्युहल लज़ीना आमनु इज़ा लकीतुम फ़ियतन फ़स्बतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। एमरजेंसी, जंग, इसमें खुदा बहुत ज़्यादा याद आता है। और खुदा का ये याद आना जो है, ये बाज़ुकत काफ़रों को भी ख्याल आ जाता है अल्लाह का, लेकिन अल्लाह ताला यहाँ इसलिए फरमाया है कि जब इस तरह की मुश्किलात आती हैं तो घबराने की बजाय साबित कदम रहना चाहिए, ठंडे दिल से मामलात को सोचें और अल्लाह को याद करें कि वो हमारा, उसने ये दुनिया चला रहा है। अल्लाह ताला ने अपने बारे में एक जुमला बहुत ही मुख्तसर है कुरान मजीद में, लेकिन पूरी बात उसमें कही है, अला लहुल खल्क वल अम्र, सुनो कि अल्लाह ही ने कायनात तख्लीक की है और वही इसको चला रहा है। तो जब कोई जंग शुरू होती है उसमें जो नताइज अल्लाह ने निकालने हैं वो निकाल देने हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो फ़र्ज़ कर लीजिए कि मैंने मरना है उस किसी जंग में, तो बस मर जाऊँगा, और किसी ने बचना है तो बच जाएगा। ये जैसे ही ये ख्याल आदमी के दिल में आ जाता है तो एक और तरह का सहारा उसको मिल जाता है, और अगर वो खुदा को याद रखने वाला है तो फिर बहादुरी पैदा हो जाती है। खुदा को याद रखने वाला नहीं है तो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर वो खौफ नहीं रहेगा जो खौफ उस बंदे पर है जो मौत और हयात की कश्मकश में खुद समझता है कि मेरा फैसला चलेगा। नहीं, फैसले खुदा के चलने होते हैं। हाँ, हम तदबीर करते हैं, हम बचने की कोशिश करते हैं, हम बहादुरी से लड़ते हैं दुश्मन को मारने के लिए, लेकिन उसके पीछे क्या होता है? पीछे एक जज्बा कारफरमा होता है कि खुदा हमारे साथ है। तो वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। तो इस तरह के मौक़ों पर भी, जब मैदान जंग में हो, एमरजेंसी हो, जैसे अभी हमारे यहाँ कोरोना की एमरजेंसी है, तो इसमें हम खुदा को याद रखें। लेकिन खुदा को याद रखने का मतलब ये नहीं है कि तदबीर नहीं करें। फ़स्बुतू पहले मौजूद है कि साबित कदमी करनी है और अल्लाह को याद रखना है। ऐसा नहीं है कि साबित कदमी तो छोड़ के भाग के आ गए, दुश्मन आ रहा था, हमने उसको रास्ते दे दिए कि जहाँ चाहे चले जाओ और खुद जाकर अल्लाह अल्लाह करने लगे। हरगिज़ ऐसा नहीं है, दो चीज़ें इकट्ठी हैं, अल्लाह के कानून के मुताबिक ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर जिक्र का मतलब यह है कि खुदा के ऊपर भरोसा करना। तो वज़्करुल्लाह कसीरन का मतलब कभी यह है कि खुदा पर भरोसा करना, कभी यह है कि उसका नाम लेना, बिस्मिल्लाह पढ़ना, कभी नमाज़ें पढ़ना, कभी नाप तोल करते हुए खुदा खौफी को सामने रखना, खुदा के सामना होने का डर रखना, ये सारी चीज़ें जिक्र हैं। अब अला यज़्कुरुल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन कब्ल वलम यकु शैया। क्या इंसान ये नहीं समझेगा कि हमने उसको बनाया है इस तरह से कि उस वक्त वो कोई चीज़ भी नहीं था? ये अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की तरफ इशारा किया है कि क़यामत में तुम समझते हो कि मैं दोबारा तुम्हें नहीं बना सकूँगा, तो ज़रा याद करो, ख्याल करो, इस बात को समझो कि मैंने जब तुम्हें पहले पहल बनाया तो तुम कुछ भी नहीं थे, अब तो तुम हो, दोबारा बनाना है बस। तो यहाँ यज़्कुरु देखिए किस मानी में आया है, यहाँ यज़्कुरु नसीहत पकड़ने के मानी में, गौर करने के मानी में आया है। तो खुदा को याद रखने का मतलब यह है कि खुदा ने जो नसीहतें नाजिल की हैं, जो हदायत नाजिल की है, जो कायनात डिज़ाइन की है, उससे नसीहत पकड़ना भी ज़िक्र है। और ये नसीहत पकड़ना कि खुदा को जवाब देना है, ये दरअसल वो ज़िक्र है जो इंसान से असल में मतलूब है। अब ये देखिए कि कज़ाली का अनज़लना हो कुरानन अरबिया व सर्रफ़ना फ़ीही मिनल वईद लअल्लहुम यत्तकून औ युहदिसु लहुम ज़िक्रा। हमने ये कुरान अरबी ज़ुबान में इसलिए उतारा है और इसमें अपने वईद को, अपने डरावे की बातों को, इंज़ार की बातों को बदल बदल कर पेश किया है ताकि वो बचें और या उनके लिए कोई नई याद दहानी इसमें सामने आ जाए। तो ये अल्लाह ताला ने ये भी बताया है यहाँ पर कि मेरे कुरान में तकरार क्यों है, इसलिए कि लोगों के लिए कोई पहलू नसीहत का बायस बन सकता है। तो अभी हमने ये बात की थी, उस वक्त तो तवज्जो नहीं थी, अगले लम्हे तवज्जो हो गई। अभी हमने बात की लेकिन उसके कॉन्टेक्स्ट में इस आदमी के लिए बात को समझना मुश्किल था, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बात समझ में आ जाएगी। तो इसलिए जो अल्लाह ताला ने तकरार कुरान मजीद में की है, सर्रफ नाफी है मिनल वईद, वो इसलिए की है ताकि नई जहत से बात सामने आए और किसी के लिए याद दहाने का बायस बन जाए। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने जिक्र के माने ये लिए हैं कि तनब्बो, आगाही, होशियार हो जाना, किसी चीज़ के लिए बेदारी पैदा हो जाना। तो बंदा मोमिन खुदा की नसीहतों के लिए बेदार होता है। वो ये नहीं होता कि मेरे भाई ने बात की कि खुदा खौफी करो और मैंने कान भी नहीं धरे और उसकी बात को एक इधर से सुना इधर से निकाल दिया, ऐसा नहीं है। तो मोमिन, जिक्र करने वाला मोमिन कौन है, उसके लिए खुदा की आयतें मुसलसल बेदारी का बायस है, याद दहानी का बायस है। उत्लु मा उहिया इलैका मिनल किताबी व अकीमिस सलात इन सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर वाला जिक्रुल्लाह अकबर। फरमाया कि इनसे कहो जो आपकी तरफ वही कही गई है उसको पढ़कर इनको सुनाओ और नमाज कायम रखो, क्योंकि नमाज जो है वो फहशा और मुनकर से रोकती है। तो नमाज क्या है? जिक्र इलाही, अभी हमने बात की शुरू में। तो जिक्र इलाही है तो जिक्र इलाही किस चीज़ से रोकेगा? बुराई से। क्यों? खुदा खौफी पैदा हो गई। जब हमारे दिल में खुदा का याद ताज़ा हुई तो हमने खुदा पूरा याद आएगा, तो हमने पेश होना है उसके हजूर। जब पेश होना है तो खुदा की ये जिक्र जो नमाज पैदा करती है ये हमें बुराइयों से रोकती है। फहशा से मुराद उरियानी और फहाशी के काम है, और मुनकर से मुराद तमाम गुनाह हैं जिनको हम गुनाह के नाम से जानते हैं। वाला जिक्रुल्लाह अकबर, और अल्लाह की याद जो नमाज पैदा करती है वो इससे बढ़कर मुअस्सर होती है, क्योंकि उसने तो खुदा याद दिला दिया है। तो अगर नमाज हमारी टूटी फूटी है तो वो टूटा फूटा ही असर करती है, लेकिन अगर हमारी याद दहानी वाली नमाज है तो वो ज़्यादा मुअस्सर है। एक और पहलू से अल्लाह ताला ने यहाँ जिक्र, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मईन्नुल क़ुलूब, जो मोमिन हैं, खुदा को मानने वाले हैं, खुदा को जानने वाले हैं, दो बड़े सवालात हैं जिसमें इंसान को खुदा के जिक्र, खुदा याद आ जाने की वजह से इत्मीनान हासिल होता है। एक ये कि ये कायनात क्या है, क्यों बनी है, कैसे बनी है, किस लिए बनी है, इन सारे सवालों का जवाब खुदा का नाम लेने से हल हो जाता है। मैं इसको एक मिसाल से समझाया करता हूँ कि आप किसी अजनबी घर में जाएं और वहाँ अंधेरा हो, रोशनी ना हो, तो आपको नहीं पता चलता कि आपने कहाँ पाँव रखना है, कोई सोफ़ा ना पड़ा हो, कोई कुर्सी से ना टकरा जाऊँ, कोई चीज़ ऊपर से लटकी हुई ना हो जो सर में लग जाए, कई खौफ होंगे। लेकिन जैसे ही आप बत्ती का स्विच ऑन करते हैं हर चीज़ वाज़ेह हो जाती है, कहाँ पाँव रखना है, सोफ़ा और कुर्सी कहाँ पड़ी है, मेज़ कहाँ पड़ी है, और कोई चीज़ लटकी हुई तो नहीं है, हर चीज़ नजर आ जाती है, कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है। ठीक कायनात का मुहिमा जो है उसमें भी खुदा का जिक्र इस रोशनी की तरह है। तो यहाँ इत्मीनान हो जाता है, अच्छा चलो बात समझ में आ गई। दूसरा इत्मीनान वो मुश्किलात में है, जब अजीब व गरीब किस्म के खौफ, अजीब व गरीब किस्म के मसाइल, अजीब व गरीब किस्म की मुश्किलें दरपेश होती हैं, तो उस वक्त अगर कोई चीज़ सहारा बनती है तो वो अल्लाह की याद है। तो इसलिए जो अल्लाह को याद करने वाले हैं वो खुदा का जिक्र आ जाने से इत्मीनान हो जाता है। इसको एक मिसाल से समझिए, मसलन एक भाई मुझे बहुत तंग कर रहा है, मेरी कोई बात तो उसको भली नहीं लगती है, वो जगह जगह मुझे बदनाम कर रहा है। तो अब मेरे अंदर एक जज्बा पैदा होगा कि मैं इसको पकड़ के झंझोड़ के समझाऊँ, समझाने का अमल भी हो गया, फिर अगला जज्बा पैदा होगा, वो बाज नहीं आया कि मैं इसको दो चार लगाऊँ, इसको नुकसान पहुँचाऊँ। लेकिन अगर मुझे ये ख्याल आ जाए कि ये तो कायनात अल्लाह चला रहा है ना, अल्लाह चला रहा है तो इसको पूछ लेगा, तो बस ऐसा इत्मीनान आता है कि तसल्ली हो जाती है। लेकिन वो फिर ज़रूरी है कि आदमी खुदा का जिक्र करने वाला हो, वो खुदा का इनकार करने वाला ना हो। बंदा जो जिक्र करने वाला है, खुदा को याद रखने वाला है, इस कायनात का फिर एक एक एकदम, ये उसका भाई जिसको अभी मैंने मिसाल दी जो उसको तंग कर रहा था, वो भी उसके लिए याद दहानी का बायस बन जाता है। नेगेटिव से नेगेटिव काम भी खुदा की तरफ कल्ब के इत्मीनान के लिए ले भागता है। लेकिन कायनात के अंदर जो भी मज़ाहिर हैं, जो भी खुदा की कुदरत के निशानात हैं, वो फिर आदमी के अंदर एक और तरह की याद दहानी डालते हैं। इसको कुरान मजीद ने यहाँ सूरह काफ की इन आयात में बयान किया है कि क्या इन्होंने आसमान की तरफ नहीं देखा जो इनके ऊपर है, कि हमने इसको कैसा बनाया है, वज़य्यन्नाह वमालह मिन फुरूज, और उसको हमने खूब संवार दिया है और उसमें कोई रखना तक नहीं है, वल्लर्ज मदद ना, और हमने ज़मीन को बिछाया है, वल्कैना फ़ीहा रवासिया, और उसमें पहाड़ भी रखे हैं, वअंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज, और उसमें कई किस्म के दिलकश पौधे उगा दिए हैं, तबसरा तन, ये बसीरत के लिए है, वज़िक्रा, और याद दहानी के लिए है, लिकुल्लि अब्दिन मुनीब, हर उस शख्स के लिए जो पलटने वाला है, गौर करने वाला है, चीज़ों के ऊपर बार बार ध्यान देने वाला है। तो नसीहत क्या है? कायनात पूरी की पूरी जिक्र करने वालों के लिए, जिक्र पूरे मानी मुकम्मल मानी में, यानी खुदा को याद रखना, नसीहत पकड़ना, और अपने जो भी नसीहत पकड़ी है या शरीयत सामने आई है उसको, उसके ऊपर अमल करना है, उन लोगों के लिए ये कायनात एक तस्करा है, एक बसीरत है, एक याद दहानी है। तो वो खुदा के इस, अभी हमने थोड़ी देर पहले वो आयत भी पढ़ी है कि जो जिक्र करते हैं और कायनात में गौर करते रहते हैं, तो ये उस गौर की एक बहुत उम्दा मिसाल है। अब ये सवाल के जिक्र करता कौन है, पिछली आयत में भी हमने देखा कि बज़िक्रा लिकुल्ले अब्दिन मुनीब, मुनीब बंदों के लिए इसमें जिक्र है, कायनात के अंदर याद दहानी है। मुनीब कौन होता है? मुनीब बिल्कुल तौबा जैसा तस्वुर है कि गलत तरफ गए और वापस आ गए। तो मुनीब कौन आदमी होता है? बात समझ आई, पुरानी बात छोड़ दी, सही बात अपना ली, ये इनाबत है, पलट आना है, गलती हो गई वापस आ जाना है। तो जो लोग वापस आने वाले हैं हकीकतों की तरफ, गलतियां छोड़ने वाले हैं, उनको याद दहानी होती। आगे फरमाया, इन्ना फिजाली का लिज़िक्रा लिमन कान लहू कल्बन, उसके लिए याद दहानी होती है, जिक्र वो करता है जिसका दिल होता है, बेदार होता है, औ अलकसमा, और वो तवज्जो देने वाला होता है, वह हुआ शहीद, और वो पूरी तरह हाजिर बाश होता है, कहीं इधर उधर जाता नहीं है, उसका आदमी को याद दहानी होती है, वो जिक्र करने वाला है। वलकद यस्सरन अल कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, ये सूरह कमर में यह फरमाया कि हमने इस कुरान को मुयस्सर कर दिया है, आसान बना दिया है याद दहानी के लिए, जिक्र के लिए, लेकिन है कोई जो जिक्र करने वाला है, जो नसीहत पकड़ने वाला है? तो ज़ाकिर असल में बहुत ही बड़ा तसव्वुर है। ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन का मतलब यह है कि खुदा को याद रखना, उसके दिए हुए अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना, उसकी आई हुई बातों से नसीहत पकड़ना, कायनात के पूरे निज़ाम में गौर करके उससे नसीहत पकड़ना, और कल्बे मुनीब वाला होना, और खुदा की तरफ रुजू करने वाला होना, और संजीदा होना। इसलिए एक जगह कुरान मजीद ने कहा है कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है, वजलत कुलूब, तो इनके दिल कांप उठते हैं। क्यों? क्योंकि खुदा के साथ वास्ता है। कद अफलह मन तज़क्का वज़क्कर इस्मा रब्बिही फ़सल्ला बल तूसिरून अल हयात दुनिया, कामयाबी किनके लिए है? जिसने अपना तज़किया किया। और तज़किया कौन करता है? जो अपने रब को याद रखता है, नमाज पढ़ता है। लेकिन हम क्या करते हैं? फरमाया बल तूसिरून अल हयात दुनिया, लेकिन तुम दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह दे रहे हो। तो आखरत की याद, आखरत का तसव्वुर, ये दरअसल इंसान को जिक्र वाला बनाता है कि वो हर जगह हर लम्हे खुदा को याद रखता है, खुदा को याद करता है, खुदा के लिए जीता है, खुदा के लिए मरता है, खुदा के लिए सारे काम करता है। उसकी मोहब्बतें भी खुदा के लिए, उसकी दुश्मनियाँ भी खुदा के लिए हो जाती हैं। तो ये है जिक्र। जिक्र का मतलब सिर्फ तस्बीह नहीं है, बैठ के अल्लाह अल्लाह करना नहीं है, लेकिन बैठ कर अल्लाह अल्लाह करना है, जो उसवा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, वो भी मैंने बता दिया कि वो पांच वक्ता नमाज है, उसके साथ नवाफिल हैं, और पूरी ज़िंदगी में मुख्तलिफ मौक़ों पर अपने कलिमात के ज़रिए से कुछ चीज़ों का इजहार करना है, और अल्लाह को याद रखना ज़िंदगी के 24 घंटों में, जो भी हम काम कर रहे होते हैं उनमें खुदा को याद रखना, ये ज़िक्र है। खुदा की दी हुई शरीयत को अपनाना, ये ज़िक्र है। خدا کی دی ہوئی نصیحتوں کو پکڑنا یہ ذکر ہے. خدا کسی نے خدا کے حوالے سے بات کر دی, اس کو توجہ سے سننا, یہ خدا کا ذکر ہے. تو خدا کا ذکر ایک جامع اصطلاح تھی, لیکن ہم نے اس کو بہت مختصر کر دیا ہوا ہے. کچھ پوائنٹ میں نے تفصیل سے بتا دیے ہیں, اب ان کا خلاصہ اس وقت ممکن نہیں ہے کہ میں سارے پوائنٹس کو بیان کر دوں, تو اسی پر اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.